मांगोगे क्या?
तो परमात्मा इसलिए नहीं है इस जीवन में कि उससे नाशवान संसार मांगो। परमात्मा की धारणा, परमात्मा की चर्चा मानव जीवन में किस लिए है कि संसार जो कुछ नहीं दे सकता वो सब उनसे ले लो। अमर जीवन संसार नहीं दे सकता तो परमात्मा से अभिन्न होकर अमर हो जाओ। सदा सदा का साथी संसार नहीं हो सकता तो परमात्मा से मित्रता करके सदा सदा के लिए सनाथ हो जाओ। कभी न मिटने वाला प्रीति का रस संसार नहीं दे सकता तो सदा सदा के लिए प्रीति रस में सराबोर करने वाला परमात्मा को मान लो। तो बिना देखे बिना जाने परमात्मा ही मानने के योग्य है। और किस लिए मानने के योग्य है कि हम उससे अभिन्न होकर ज्ञान स्वरूप हो जाएं, प्रेम स्वरूप हो जाएं, जन्म मरण की बेबसी मिट जाए, अभाव मिट जाए, नीरसता मिट जाए। और आप सच पूछिए तो परमात्मा ने मनुष्य की रचना ही इसलिए की कि उनको प्रेम के आदान प्रदान के लायक दूसरा कोई प्राणी मिला नहीं संसार में। महाराज जी की वाणी सब ऐसी ऐसी याद आती है मुझे। वो कहते हैं कि संसार बनाया परमात्मा ने मेरे लिए। एक बार किसी ने पूछा था कि स्वामी जी भगवान ने संसार को क्यों बनाया, तो पहले तो उसको डांट दिया, कहा कि भगवान ने बनाया तुमको कैसे मालूम है, कैसे कह सकते हो कि भगवान ने बनाया, भगवान ने कहा है तुमसे? नहीं महाराज, किसी कहा है। तो पहले तो उसकी इस धारणा को उड़ा दिया, फिर कहा कि भैया प्रभु ने संसार बनाया मेरे लिए और मुझको बनाया अपने लिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा परम प्रेम का भंडार है, ये मनुष्य के सिवाय और कौन कहेगा जी? और कोई नहीं कह सकता है। पेड़ पौधे कहेंगे, गाय बैल घोड़े बिल्ली कुत्ते कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो आपके सिवाय उस अनंत परमात्मा पर अपने को न्योछावर करने वाला सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं। तो महाराज ने कहा कि उन्होंने मुझको बनाया अपने लिए, अर्थात परमात्मा की चर्चा जब जीवन में आती है तो हम भाई बहनों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भिखारी होकर उसके सामने झोली फैलाएं। हमें, हम लोगों को उन्होंने मांगने के लिए नहीं बनाया, बड़ा स्वतंत्र बनाया, बड़ा समर्थ बनाया। शरीर के साथ जो कुछ लगा हुआ है सब संसार की सेवा में दे दो और अपने में तुम्हारे जितने प्रेम का भाव है वो सब परमात्मा को दे दो और स्वयं सबसे स्वाधीन रहो, किसी के अधीन नहीं। न दिखाई देने वाले दृश्य जगत से कुछ मांगो और न अदृश्य परमात्मा से कुछ मांगो। तो सचमुच से जिन वीर पुरुषों ने, आज के बड़े कर्मठ ईश्वर विश्वासी महापुरुष महात्मा गांधी ने लिखा है कि सत्य को स्वीकार करना, ईश्वर में विश्वास करना, ये बुजदिलों का काम नहीं है, वीर लोगों का काम है। तो ऐसी वीरता हम सब भाई बहन कर सकते हैं। कौन सी? कि दिखाई देने वाले सुहावने लुभावने संसार को इनकार कर देना, नहीं 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 नहीं, मुझे यह नाशवान सुख नहीं चाहिए। और बिना देखे बिना जाने परमात्मा पर, एक वाक्य मैंने अपनी ओर से जोड़ लिया, बिना किसी शर्त के अपने को न्योछावर कर देना। उनसे कोई शर्त भी नहीं करेंगे कि हम तुम्हारी शरण में आए तो मुझे मुक्ति दे देना, और हमने अपने को तुम्हारे समर्पित किया है तो मुझको भक्त शिरोमणि बना देना, ये मांग भी नहीं करना है परमात्मा से। मांगी क्यों? जो मांगने के लिए हाजिर होगा वो प्रेमियों की श्रेणी में समा नहीं सकेगा। और परमात्मा ने आपको बनाया प्रेम के आदान प्रदान के लिए। तो महाराज कहते कि एक बार, केवल एक बार तृषित हृदय की तृष्णा से पीड़ित होकर और प्रेम की प्यास से प्रेरित होकर उस अनंत परमात्मा परम प्रेमास्पद प्रेम सिंधु को कह दो कि हे प्रभु मैं तेरा, अथवा ऐसा कह दो कि हे प्रभु तू मेरा। तो मानव हृदय के इस आत्मीय भाव पर मुग्ध होकर आनंदित होकर वह अनंत ऐश्वर्यवान अपने ब्रह्म होने के ऐश्वर्य को भुला देता है और आपके हृदय के भाव का आदर करने के लिए छोटा सा नन्हा सा दो हाथ दो पांव का बनकर आपके इशारे पर नृत्य करता है, गाता है, ताली बजाता है। रसखान ने लिखा है ना, साहि अहिर की छो हरिया सचिया भर छाछ पर नाच नचा। उसको बड़ा पसंद आता है। मनुष्य ने हृदय खोलकर एक बार कहा, हे प्रभु तू मेरा, ऐसा कहने में भी कोई संकोच नहीं है। अब मैं ऐसा कहती हूँ, प्रारंभ में जब मुझे संत से सलाह मिली कि दोनों में से जो भी तुम्हें पसंद आए कह दो, तो मुझसे ये नहीं कहा गया कि तू मेरा, कहने का साहस नहीं हुआ, डर लगा। कौन बल से मैं कहूँ? अपने जीवन की दुर्बलता, अपने भीतर का अंधकार और जन्म जन्मांतर की कामनाओं से त्रिषित हृदय का सूखापन, जहाँ रस की एक बूंद का पता नहीं चलता था। तो मैंने कहा कि कौन बल पर मैं कहूँ कि तू मेरा। तो हमारे भीतर से ये प्रेरणा मिली कि असमर्थ व्यक्ति हो, उस प्रेम स्वरूप को प्रेम प्रदान करने का साहस वो कैसे करे। तो ये तो नहीं कह सकी मैं कि तू मेरा, लेकिन ये कहने में थोड़ा साहस मिल गया कि मैं तेरी। अरे भाई, असमर्थ तो सामर्थ्यवान की शरण ले सकता है ना जी, ले सकता है। तो मैं क्या बताऊं, जीवन का ये ऐसा ठोस सत्य है कि चाहे अपने को कह दो कि मैं तेरा हूँ और चाहे उनको कह दो कि तू मेरा है, भक्तिमती मीरा जी की तरह इतना शुद्ध हृदय था, इतनी कोमलता थी, जगत की जड़ता से मुक्त वह जीवन था, तो उन्होंने कह दिया मेरो तो गिरधर गोपाल, तू मेरा है, ऐसा कहने का साहस उनको हुआ। और विविध प्रकार की विकृतियों से भरा हुआ व्यक्तित्व, अपनी ही भूल के परिणाम से पीड़ित जीवन, अपने को ही संभाल नहीं पाते हैं, तो कहाँ तक उनको कहेंगे कि तू मेरा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, विकृत जीवन है तो क्या और त्रिषित हृदय है तो क्या, उसकी शरण में जाकर यह पूर्ण हो सकता है। तो मैंने अपने लिए यह निश्चय किया कि हम तो यही रखेंगे। तो अगर इस प्रकार का भाव मनुष्य अपनी ओर से उस अनंत परमात्मा को अर्पित करता है, तो उसके उसी साधन काल में, मैं सिद्ध जीवन की चर्चा नहीं करती हूँ, उसी साधन काल में उसके भीतर ईश्वरत्व अभिव्यक्त होता है और परमात्मा के संबंध के सारे संदेह पलमात्र में खत्म हो जाते हैं।
भजन ध्यान किया नहीं जाता, होता प्रचलित भाषा में हम लोग क्या सुनते हैं, साधन करो, भजन करो, ध्यान करो, करो, ऐसा सुनते हैं। मानव सेवा संघ की प्रणाली में जो कि मानव जीवन की वैज्ञानिकता, दार्शनिकता और आस्तिकता पर आधारित है, उसमें यह नहीं कहा जाता कि साधन करो, भजन करो, ध्यान करो, ऐसा नहीं कहा जाता। उसमें कहा जाता है कि जीवन पर विचार करो, आत्मनिरीक्षण करो, सत असत का विवेचन करो, करने वाली बात, अपनी जानी हुई भूल को करो मत, की हुई भूल को दोहराओ मत, अपने जाने हुए असत के संग का त्याग करो, जिस सत्य की हम चर्चा करते हैं, जिस सत्य को अपने द्वारा अपने लिए संभव मानते हैं, उसे स्वीकार करो। तो सत्य को स्वीकार करो, असत्य को अस्वीकार करो, आत्म निरीक्षण करो, जीवन पर विचार करो, संसार की सेवा करो। तो करने में ये सब बातें आ गई, विचार करना, सेवा करना, जाने हुए असत के संग का त्याग करना, ये सब करने में आ गई। और साधन भजन ध्यान ये सब होने में आ गया। कैसे? साधन का अर्थ क्या है? एक बड़ा व्यापक अर्थ आप सुनेंगे मानव सेवा संघ की भाषा में। साधन का अर्थ क्या है? बुराई रहित होना। आप साधक हैं, इसकी पहचान क्या है? कि आप अपने को बुराई रहित बनाने में लगे हुए हैं, इसका अर्थ है कि आप साधक हैं। आप भजन करते हैं? नहीं, करने वाला भजन जो होगा वो थोड़ी देर का होगा। क्रिया जो है उसका आरंभ होता है तो अंत भी होता है, ये तो सर्वमान्य बात है। ये किसी मत संप्रदाय की बात नहीं है, ये फिरके की बात नहीं है। जिस क्रिया का आरंभ होगा उसका अंत जरूर होगा। और हमारा भजन कैसा होना चाहिए? संतों ने, भक्तों ने क्या कहा, भगवत वाणी में क्या कहलवाया? भजनी निरंतर मोहि। कृष्ण भगवान ने कह दिया, राम भगवान ने कह दिया, अवतारी वेश में जिन्होंने हम लोगों का पथ प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि निरंतर भजो। तो ये करने वाला भजन जो आप आरंभ करिएगा तो वो निरंतर होगा कि अंत हो जाएगा? जी, अंत हो जाएगा। तो जिस भजन का आरंभ होगा और जिस भजन का अंत होगा वह भजन अखंड नहीं होगा। वो भजन बुरा है ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, कि वो नहीं करना चाहिए ये भी नहीं कह रही हूँ मैं। भजन करने वाले साधक की आवश्यकता बता रही हूँ कि हम लोगों की आवश्यकता कैसी है, कि जीवन में अखंड भजन रहे। तो कौन सा भजन अखंड रह सकता है? मानव सेवा संघ कहेगा कि करने वाला भजन तो अखंड नहीं होगा। अगर साधक के जीवन में सत्संग के फल स्वरूप भजन अपने आप से होने लगा तो जो अपने आप होता है वो अखंड हो सकता है। ऐसा कौन सा भजन है जो अपने आप होगा? ऐसा कौन सा भजन है जो अपने आप होने लगेगा? तो इसके अर्थ में संत की सलाह यह है कि भाई देखो, भक्त के लिए भजन का उद्देश्य क्या है? तो भक्त भजन करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है ना? जो भक्त है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। तो भगवान की प्रसन्नता जिसको अभीष्ट है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? सबसे पहली बात ये करेगा कि प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखना, भगवान सृष्टि के मालिक को प्रसन्न करना है और सृष्टि के किसी भी प्राणी के साथ वैर भाव है मेरे जीवन में, किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे और उस पर मेरा ध्यान न जाए, तो दूसरों को दुख देकर अपनी सुविधा करने वाला कैसे भक्त हो सकता है और कैसे उसके द्वारा भजन होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे? वो प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव निरंतर होने वाले भजन का एक स्टेप हुआ। और क्या कि आप दुनियावी संबंध में देख लीजिए, किसी भी नाते से एक बार जिसको आपने अपना कहकर मान लिया, उसकी याद आती है कि याद करना पड़ता है? आती है। आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के आसपास मथुरा में, आगरा में, इधर उधर किसी जगह पर दुनिया की दृष्टि से माना हुआ कोई भी संबंधी हो तो इधर आने का विचार मन में आते ही उस संबंधी की याद आ जाती है कि विधि विधान से आपको बैठ के करना पड़ता है? आ जाती है। मिलने जाने का संकल्प अपने आप उठ जाता है कि नहीं? आप उस संकल्प की पूर्ति कर सके अथवा न कर सके, लेकिन निकट में रहने वाला कोई भी आपका माना हुआ संबंधी हो तो उसकी याद आए बिना नहीं रह सकते। ये क्या है? याद आ गया कि विधि विधान से आसन मुद्रा साध करके याद करना पड़ा जी, अपने आप आ गया। संत जन भक्त जन सलाह देते हैं कि मिथ्या संबंध है। मान लीजिए किसी को आपने अपना संबंधी मान लिया, लड़के लड़की की शादी जब तक नहीं किए थे वो संबंधी था क्या? नहीं था। और माना हुआ संबंध है उसका या आपका शरीर नहीं रहा तो फिर वो संबंधी रहा क्या? नहीं रहा। तो पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, तो मध्य में जो होने के समान भाषित होता है ज्ञानी जन उसको भी नहीं करके मानते, नहीं करके जानते हैं। तो ऐसा मिथ्या संबंध यदि आप में स्वतः ही उसकी स्मृति को जगा देता है तो जो नित्य संबंधी है, जो मेरे भूल जाने पर भी मुझको नहीं भूलता है, जो मातृगर्भ में हम उल्टे टंगे हुए थे तब भी मेरे साथ था और ये 3.5 हाथ का बिल्डिंग जब पिता पर जलता हुआ होगा तब भी वो मेरे साथ होगा, ऐसा जो नित्य संबंधी है उस नित्य संबंधी को हम अपना संबंधी कहकर स्वीकार करेंगे तो उसकी याद आएगी कि झाल मजीरा बजा करके याद करना पड़ेगा? आएगी। तो जो अपने आप भगवत स्मृति को जगा दे वो तो सत्संग हुआ और स्मृति का जग जाना इसका नाम भजन हुआ। तो मानव सेवा संघ ऐसा भजन का अर्थ बताता है। और जो भगवान को न माने उनको कुछ नहीं कहते, न माने तो बड़ी अच्छी बात है। अगर विश्वास करना पसंद नहीं है तो मत करो विश्वास, लेकिन विश्वास करते ही हो उनको भजन के द्वारा रिझाना तुम्हारे जीवन का एक अनिवार्य व्रत बन गया है तो सच्चा भजन करो ना। ऐसा भजन क्या करना कि शुरू किए थोड़ी देर के बाद थकान आने लगी, कुछ देर के बाद जंघाई आने लगी, कुछ देर के बाद गला बैठ गया, कुछ देर के बाद भूख प्यास लग गई तो भजन खंडित हो गया। मैंने महात्मा गांधी के अत्यंत निकट रहने वाले साधक के मुंह से सुना प्रार्थना की सभा में सब लोग बैठे थे, प्रार्थना हो रही थी, आंख बंद करके सब लोग भगवान का ध्यान कर रहे थे, चुपचाप थे। तो जंगल में से एक सर्प निकला और बापू की गोदी में से ऐसे होते हुए पास चला गया। प्रार्थना सभा में बैठे हुए किसी किसी की नजर उस पर पड़ी और सब लोग भीतर भीतर घबराने लगे। कोई उठ के खड़ा हो गया, कोई फुट फुट करने लगा। इतने से पीछे की हिम्मत हुई नहीं कि बापू को पकड़ के हिला दे या जगा दे या चिल्ला दे, लेकिन आपस में कुछ कुछ करके लोग रह गए। प्रार्थना की सभा पूरी जब हो गई तो उत्सुकता के मारे, कौतूहल के मारे लोगों से रहा नहीं गया। तो दो चार लोग कहने लगे, अरे बापू सर्प आया था आपकी गोदी में से होके निकल गया, इधर से करके इधर चला गया। बापू को तो पता नहीं चला था, शांत रहे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ऐसा हुआ? हाँ बापू ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमने भाई प्रार्थना की घड़ी थी ना जी, तो सर्प को इधर से आते हुए इधर से निकलते हुए देखा किसने? ये प्रार्थना कैसी कि तुमको अपने प्रार्थ्य से भिन्न का भी आभास हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये आराधना कैसी कि तुम्हारे हृदय का तार, तुम्हारा तन मन रोम रोम जिसकी आराधना कर रहे हो उस आराध्य में खो नहीं गया है। कैसी प्रार्थना, कैसी आराधना, ये कैसा भजन कि तुमको बाहरी दृश्य का भी भास हो रहा है, भय और चिंता हो रही है, कौतूहल हो रहा है, ये क्या हो रहा? मानव सेवा संघ ने कहा, देखिए मैं भी आप ही के समान बहुत ही सामान्य स्तर से साधक का जीवन आरंभ करने वालों में से एक हूँ, और मैं अपनी दुर्बलताओं को, विश्वास के अधूरेपन को, भजन की निर्जीवता को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। संत के पास बैठकर मैंने साधन भजन ध्यान का अर्थ जो जितना मेरी पकड़ में आया, जितना उन्होंने कहा मैंने सब समझ लिया, ऐसा तो कह नहीं सकते। जितना समझ में आया, जितनी पकड़ में आया, उसके आधार पर मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि हम सब लोग साधन ध्यान भजन करते ही हैं, तो जितना कर रहे हैं उसको छोड़े नहीं, जैसा कर रहे हैं उसको बुरा न समझें, लेकिन हर भाई बहन अपनी अपनी दृष्टि से अपने साधन ध्यान भजन की ओर देखे, एकांत में बैठ करके उस पर विचार करे और उसमें अधिक से अधिक सजीवता कैसे लाई जा सकती है ये उपाय करता चले तो विकास हो जाएगा। तो मैंने ऐसा सुना है, एक मुसलमान संत रविया के जीवन को पढ़ा है, चौका बर्तन करने का काम करती थी, भगवान को मालिक मानती थी, तो मालिक के घर में झाड़ू चौका बर्तन रसोई का काम पूरा हो जाए, सफाई धुलाई, एकांत में अकेले में बैठे तो ईश्वर की आराधना में अपने आप को भूल जाएं। महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण दिया, प्रार्थना के समय वे अपने को, शरीर को, संसार को भूल जाते थे, आराध्य से भिन्न किसी दृश्य का आभास उन्हें नहीं रहता था। ऐसे अनेक संत भक्तों के जीवन की कथाएं हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है हमें। इसके आधार पर और अपनी आवश्यकता को अपने सामने रखकर मैं यही समझती हूँ कि हम भाई बहनों में से यदि कोई ईश्वर विश्वासी है, मेरा ऐसा अनुमान है कि हम लोगों में से 99% ईश्वर में विश्वास करने वाले ही यहाँ बैठे हैं। निवृत्ति परायण और ज्ञान की अग्नि में सब विकारों को भस्म करने वाला बिरला ही बहादुर यहाँ कोई होगा। हम सब लोग तो अपनी दुर्बलताओं में अपने को समेटे हुए किसी तरह प्रभु की महिमा के बल पर अपने को पार करना चाहते हैं। तो ईश्वर विश्वासी हम लोग हैं। ईश्वर विश्वासी भाई बहनों से, आत्मीय जनों से मेरा यह नम्र निवेदन है कि जीवन के सत्य को पकड़ने की हम लोग चेष्टा करें। तो संत ने सलाह क्या दिया कि जिसको हम अपना मानते हैं उसका ध्यान अपने आप बारंबार आता रहता है। परसों एक भाई यहाँ से पुरुलिया गए, मैंने पूछा मनोहर भाई जल्दी क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि माता जी को बीमार छोड़ के आया और उनका खाना पीना छूट गया था, तो यहाँ बैठा रहता हूँ तो रह रह के भीतर से मन उचाट हो जाता है। तो क्या मतलब है कि जिसको हमने अपना संबंधी करके स्वीकार किया उसकी याद आती है, और चूंकि संसार का संबंध मिथ्या है इसलिए मिथ्या संबंध मानने पर जिसको मैंने संबंधी माना उसकी याद आने से जी उचट गया। कितना सत्य है आप देखिए ना, मैं सगुण स्वरूप की चर्चा कर रही हूँ, ना निर्गुण स्वरूप की, ना शैव की, ना वैष्णव की, ना राम की उपासना, ना कृष्ण की उपासना, ना खुदा की उपासना, ना गॉड की प्रार्थना, ये मैं भेदभाव की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सर्वव्यापी चर्चा जो मानव सेवा संघ ने मानव मात्र के हित के लिए किया है वो आपके सामने रख रही हूँ, आप अपने जीवन में देखिए। क्योंकि माना हुआ संबंध संसार के व्यक्ति के साथ मिथ्या है इसलिए उस मिथ्या संबंध का परिणाम ये है कि उसकी याद आई तो जी उचट गया, अभाव सता गया, दूरी मालूम होने लगी। हाय कहाँ पर पुरुलिया में माँ पड़ी हुई है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर उसका देहांत हो गया तो मुझको बड़ा पछतावा होगा। तो जी उचट गया, आपस में दूरी मालूम होने लगी, जल्दी से वहाँ पहुँचने का संकल्प पैदा हो गया, तो काल स्थान की दूरी का भास हो गया और याद आने से जी में उचाट भर गया। ठीक इसके विपरीत भक्तजन का यह अपना अनुभव है कि जो जो मेरा नित्य संबंधी है और नित्य निरंतर मुझी में विद्यमान है उसकी याद आती है तो जिनसे दूरी है उनकी विस्मृति हो जाती है। कितना बड़ा अंतर है, और जी में विचार नहीं आएगा, वह तो बड़ा रस रूप है, अनंत माधुर्यवान है, अत्यंत निकट है, उसकी याद जब आती है तो भीतर का उचाट जो है ना वो खत्म होने लगता है, भीतर की जो नीरसता है वो मिटने लगती है, वो स्वयं रस रूप है, इसलिए उसके रस से जीवन में एक क्षण की तो कौन कहे जन्म जन्मांतर की नीरसता का नाश होने लगता है, अपने आप हृदय प्रेम से उमड़ने लगता है, अपने आप भीतर का सूनापन भरने लगता है। और जिसको मैंने अपने से दूर माना था, कहीं छिपा हुआ, कहीं बड़ा रहस्यमय माना था, संत ने सलाह दी कि देखो भाई तुम जानती नहीं हो उसको, तुमने देखा नहीं है उसको, लेकिन वो है तुम्हारे अत्यंत निकट, केवल तुम्हारी विस्मृति, तुमने अपने उस नित्य संबंधी को भुला दिया था इसलिए वो अत्यंत रहस्यमय हो गया है। तुम अपने उस नित्य संबंधी को याद करोगी तो तुम जहाँ हो वहीं पर, जैसे हो वैसे ही, उसी काल में उसी स्थान में, तू के वह स्वयं प्रकाश है, तू के वह घटघट पाती है, तू के वह अंतर्यामी है, तू के वह तुम्हारा अत्यंत प्रेमी है, इसलिए तुमको उसकी स्मृति आई नहीं कि उसकी विद्यमानता से तुम्हारा हृदय भर जाएगा। कितना अंतर है, मिथ्या को मिथ्या की याद आ गई तो उचाट भर गया, सत्य की याद आ गई तो जन्म जन्मांतर का उचाट नष्ट हो गया, रस से जीवन भर गया। कितना अंतर है। तो अब प्रभु की स्मृति के लिए आप देखिए, तीर्थ में जाना जरूरी है कि गंगा तट बैठना जरूरी है कि हिमालय की गुफा में बैठना जरूरी है कि मंदिर को बदल करके मस्जिद बनवाना जरूरी है कि मस्जिद को बदल करके गिरजाघर बनवाना जरूरी है, ये सब जरूरी है कि मिथ्या संबंध को मिटा करके उस नित्य संबंध की स्वीकृति जरूरी है, है? अब उस स्वीकृति के लिए आप में सामर्थ्य जितनी है उतनी लगाइए, और असमर्थ हैं, चल फिर नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, संत महापुरुष के पास पहुंच नहीं सकते, संस्कृत के श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते, तो कोई चिंता की बात नहीं, वे पढ़े लिखे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, निम्न वर्ण में जन्मे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, और एक क्षण पहले तक लाखों अपराधों के अपराधी बन चुके हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। अनित्य स्वीकृति को अस्वीकार करके उस नित्य संबंधी के साथ संबंध स्वीकार कर लेने में किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया था, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि इतने ब्राह्मणों की हत्या करते थे कि एक दिन में सुबह से लेकर संध्या समय तक 9 मन जनेऊ इकट्ठा हो जाता था, 9 मन जनेऊ। एक दिन कोई विलक्षण विप्र आ गया, उसने कहा कि अरे भाई ये जो तुम कर्म कर रहे हो दुष्कर्म, परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, जाके जरा परिवार के लोगों से पूछो तो कि इसका फल जो मिलेगा तुमको, उस फल में वे लोग तुम्हारे साथी होंगे। चले गए, स्त्री बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमने थोड़े कहा था तुमको पाप करने के लिए, हम क्या जाने कि तुम कैसे कमाते हो, हमको तो खाने से मतलब, तुम जैसे भी ला के देते हो हम खाते हैं, हम क्या जाने, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो एक सेकंड की बात थी ना, सुना उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा कोई मेरे साथ नहीं होगा तो ठीक है, आज से ये कर्म छोड़ा। तो उनको समय बिताना पड़ा कि काल स्थान बदलना पड़ा कि बाहर से वेश बदलना पड़ा कि जितने दिन तक उन्होंने दुष्कर्म किए थे उतने दिन तक कोई शुभ कर्म का अनुष्ठान करना पड़ा, ये सब कुछ नहीं, उनको सूझ गया कि मेरा कोई साथ नहीं देगा तो आज से इसको छोड़ो। तो एक सेकंड में उनके अहम में परिवर्तन आ गया। और बहुत से लोग संस्कारों का नाम लेते हैं, अब देखिए भगवान की कैसी लीला है, उन्होंने हम लोगों को संस्कार का भी चमत्कार दिखला दिया। गोस्वामी जी ने क्या कहा है, मरा मरा जपत मुनिस पार ब्रह्म भय, राम राम जपत न जाने कौन क्या गति है, कुछ ऐसा कुछ लिखा है। संस्कार की बात हो गई, मारो 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 करके दौड़ते दौड़ते मारो मारो कहने की आदत हो गई थी, तो उस विप्र ने सलाह दी कि भैया राम राम जपो ये कर्म छोड़ो। तो राम राम कहा नहीं जाता था तो मारा मारा कहते थे, लेकिन हृदय में राम था, मुख से अभ्यास बस राम कहा नहीं जाता था, तो कहते थे मुख से आवाज निकलती थी मारो मारो, और हृदय में रहता था राम। उल्टा नाम जपते जपते मुनीश पार ब्रह्म हो गए, मुनीशों के मुनीश्वर हो गए। क्या हो गया, अहम में परिवर्तन हो गया। अब तक मैंने अमुक प्रकार की भूल की थी, अच्छा ठीक है, आज मुझे मालूम हो गया कि ये मेरी भूल थी, अब नहीं हो गया परिवर्तन। आपका मेरा जो ये अहम रूपी अणु है, ये ऐसी विचित्र चीज भगवान ने बनाई है, इस दुनिया में ऐसी विचित्र चीज बनाई है कि इसको संसार के साथ मिला दो तो मिलकर मिट्टी हो जाए। और कितने दिन का किया हुआ अपराध दोष क्यों न हो, वर्तमान में भगवान की शरणागति ले लो तो तत्काल वे साधु के समान बना देते हैं। भगवान की वाणी है ना, करो सत्य से ही साधु समान, सत्य तुरंत ही, तत्काल ही, देर नहीं लगती है। ऐसी अद्भुत रचना हमारी आपकी है, अभी है, इस वर्तमान में, इस कलिकाल में इतना सुंदर अवसर पाकर के भी की हुई भूलों को छोड़ने का साहस मैं न करूं, और नित्य निरंतर जो मुझमें विद्यमान है, मेरी प्रत्येक गति विधि को संभाल रहा है, जीवन की प्रत्येक घटनाओं से मुझे सजगता दे रहा है और हर समय मुझको अपनाने के लिए तैयार है, उससे मिलने का साहस न करूं तो ये अवसर निकल जाएगा हाथ से, बाद में पता नहीं फिर क्या होगा। तो आप बड़े मूल्यवान हैं, आपके हृदय का प्रेम तत्व सारी सृष्टि से अधिक मूल्यवान है, सृष्टिकर्ता उसकी प्रतीक्षा में है। हम सब लोग अपनी सब दुर्बलताओं को लिए हुए, अपनी सब त्रुटियों के साथ ही, अपनी असमर्थता की पीड़ा से पीड़ित होकर, उस महामहिम की महिमा में विश्वास करके हम उसके प्रेमी होना पसंद करें, उसके संबंध को स्वीकार करें और अपने आप जब बारंबार बारंबार उसकी याद आने लग जाएगी तो जीवन में कितना चमत्कारपूर्ण परिवर्तन होगा कि जिसकी कल्पना और अनुमान नहीं किया जा सकता। तो याद आने लग जाए तब हम जाने कि भजन हो रहा है, और जब तक याद करना पड़ रहा है तब तक बुराई नहीं है याद करने में, लेकिन हम लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि ये तो भजन का एक प्रकार का रिहर्सल है, ये ट्रेनिंग हो रही है। भगवान के भजन में आज हम क्रियात्मक रूप से लगे हैं और हमारी ये चेष्टा हो कि क्रिया गौण हो जाए, भाव प्रधान हो जाए। वो भावात्मक भजन कब आरंभ होगा, जब हम सत्यता के साथ उस नित्य संबंधी के संबंध को स्वीकार कर लें, दुख में, सुख में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक दृश्य में, जीवन की प्रत्येक घटना के द्वारा, प्रत्येक कार्य के द्वारा, बस उसी उसी में रम जाए, तब मुझे ध्यान होगा, तब मुझे ध्यान होगा,
जिस प्रकार विषावंत प्राणी को जल न मिलने पर जल की अभिलाषा स्वतः उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, उसी प्रकार सच्चे प्रेमियों के हृदय में प्रेम पात्र के मिलने की अभिलाषा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। यह भली प्रकार समझ लो कि सुख का राग मिटाने और असार संसार से ऊपर उठाने के लिए ही दुख आता है। अतः दुखी प्राणियों को संसार की आशा नहीं करनी चाहिए। ज्यो ज्यो चित्त में प्रसन्नता, हृदय में निर्भयता और मन में स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों आवश्यक शक्तियों का विकास स्वतः होता जाता है। निर्वासना आने पर चित्त में प्रसन्नता, हृदय में निर्भयता और मन में स्थिरता स्वतः आ जाती है। जिसके मन से वस्तुओं का चिंतन ध्यान निकल जाता है उसका मन आनंद घन भगवान का ध्यान स्वतः करने लगता है। ध्यान वही है जो अपने आप हो। जिस प्रकार सूखी लकड़ी को नदी का बहाव जहाँ चाहता है ले जाता है, लकड़ी जल से कुछ नहीं कहती, उसी प्रकार भक्त को भगवान जहाँ चाहे ले जाते हैं। भक्त भगवान से कुछ नहीं कहता, अतः अपने में भक्त भाव की स्थापना कर अचिंत हो जाओ, अर्थात किसी प्रकार का चिंतन मत करो। सब प्रकार के चिंतन का त्याग होते ही अपने में ही अपने प्रियतम का अनुभव होगा। प्रेमी तथा प्रेम पात्र के बीच में केवल चिंतन ही रुकावट है जो दोनों को मिलने नहीं देता। जिसने व्यर्थ चिंतन का त्याग किया उसने ही प्रियतम के प्रेम को पाया है। जो प्राणी अपने को छोटी छोटी प्रसन्नताओं में आबद्ध नहीं करता उसी को स्थायी असीम अनंत अखंड प्रसन्नता मिलती है। उस प्रसन्नता के प्राप्त करने में प्राणी सर्वदा स्वतंत्र है। स्वतंत्रता तो केवल संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए है जिसे विचारशील स्वीकार नहीं करते, क्योंकि संयोग में वियोग का भय सर्वदा बना रहता है। भय युक्त प्रसन्नता उन्हीं प्राणियों को प्रिय है जिनमें सच्ची आस्तिकता नहीं है। आस्तिक प्राणी तो उसी प्रसन्नता को स्वीकार करता है जिसमें किसी प्रकार का भय न हो। प्रीति का पाठ मछली से पढ़ना चाहिए। मछली जल के बिना किसी भी प्रकार चैन से नहीं रहती, किंतु जल कभी भी मछली का स्मरण नहीं करता। हाँ, यह अवश्य है कि जो जल की धारा बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तोड़ देती है, मछली उस धारा के विपरीत स्वतंत्रता पूर्वक विचरती है। जल उस पर अपना लेश मात्र भी शासन नहीं कर पाता, प्रत्युत प्यार करता है। उसी प्रकार सच्चा प्रेमी प्रेमास्पद के पवित्र प्रेम को पाकर सब प्रकार से संतुष्ट हो कृतकृत्य हो जाता है। उस पर संयोग की दासता तथा वियोग के भय का लेश मात्र भी शासन नहीं रहता।